عباده الذين بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، مبارك وسلم. يا أيها النبي، أي نبي، حرض المؤمنين على القتال، شوق دلائیں مسلمانوں کو قتال کرنے کا، جنگ کرنے کا شوق دلائیں. تو یہ شوق دلانا، یہ فوج کے اندر کسی کو بھرتی کروانا، یہ دین کے لیے اپنے آپ کو، اپنی جان کو پیش کرنا، یہ قرآنی حکم ہے. اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یکم منکم 20 صابرون، اور اگر تم میں سے 20 شخص ہو ثابت قدم، یغلبو 200، تو وہ غالب ہوں گے 200 پر. وَإِن يَكُم مِّنكُم 100، اور اگر تم میں سے ہو 100 شخص، تو یغلبو 1000 من الذین کفروا، تو وہ غالب ہو جائیں گے 1000 کافروں پر. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اس واسطے کہ وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے. تو قرآن پاک کی اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو فرمایا کہ جی، جنگ کرنے کا، قوم کے لیے لڑنے کا، مسلمانوں کے لیے لڑنے اور جنگ کرنے کی آپ ترغیب دیں. اور پھر ایک خوشخبری سنائی کہ اگر تم 10 ہو اور ثابت قدم رہنے والے، نیک نیت ہو، مومن ہو، تو 200 کو ہرا دو گے، 200 کے اوپر غالب آ جاؤ. اور اگر تم 100 ہو تو تم 1000 پہ غالب آ جاؤ گے جو کافر ہیں، کیونکہ یہ جو کافر ہیں یہ سمجھ نہیں رکھتے. جو اللہ سے دور ہے اس سے زیادہ بے سمجھ اور کوئی نہیں ہے اس دنیا میں، اس سے زیادہ محروم کوئی نہیں، اس سے زیادہ نقصان کرنے والا کوئی نہیں. تو قرآن پاک کی اس مبارک آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یہ خوشخبری سنا دی. اس مبارک آیت کے حوالے سے حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی گہری بات فرمائی ہے، تو امید ہے تمام طالبات اس کو غور سے سن رہی ہوں گی. اور وہ یہ ہے کہ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اس آیت کو دو طرح سے مفسرین نے دیکھا ہے. ایک تو خوشخبری کے طور پہ دیکھا ہے کہ جی، اگر 10 مسلمان ہیں تو 100 پہ غالب، اور 100 ہیں تو 1000 پہ غالب. یہ بڑی خوشخبری ہے، اللہ کی طرف سے قرآن میں آ گیا. مگر اس کا ایک اور زاویہ دوسرا یہ بھی ہے، اس کا ایک فقہی زاویہ ہے کہ اگر کسی میدان جنگ میں 10 ہیں اور سامنے 100 موجود ہیں، تو اب کیونکہ اللہ نے قرآن میں یہ ریشو بتایا ہے، تو 10 سے زیادہ اگر موجود ہیں اور سامنے 100 موجود ہیں، تو اب ان کو اجازت نہیں کہ وہ میدان چھوڑ کے چلے جائیں. اسی طرح اگر 100 موجود ہیں اور آگے سامنے والے 1000 ہیں، تو ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میدان چھوڑ کے چلے جائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ آیت بھی جنگ بدر کے وقت نازل ہوئی. اس آیت کے بعد اگلی آیت میں یہ جو ہے 10 100 سے لڑ سکتے ہیں اور 100 جو ہیں 1000 سے لڑ سکتے ہیں، اس میں تخفیف بھی کر دی گئی کہ اب کہا گیا کہ 100 جو ہے وہ 200 سے لڑ لیں، یہ بھی کافی ہے. تو یہ تخفیف اس لیے کر لی گئی کہ جی، آدھی اگر آپ کی فوج ان کے مقابلے میں آدھی ہے، تو اب آپ کو इजाजत है कि आप आधी से कम है तो इजाजत है कि आप विड्रॉ कर सकते हैं, मैदान से पीछे हट सकते हैं। तो इस मुबारक आयत को देखने के दो जाविये हैं। एक तो खुशखबरी की तरह से है कि अल्लाह ने बरकत रख दी है कि मोमिन है और अच्छी नीयत से लड़ रहा है, तो 1 भी 10 के बराबर है। मगर असल पैगाम इस आयत का यही है कि अगर ईमान वाला है, इखलास के साथ अल्लाह के लिए लड़ता है, तो बरकत हो जाती है। जैसे कि पिछले आयत में हमने बताया कि जी मोमिन जो है उसको बरकत अल्लाह देते हैं, और जब इंसान अल्लाह के रास्ते में लड़ने के लिए कदम बढ़ाता है और अल्लाह के लिए लड़ने के लिए कदम बढ़ाता है, फिर जबरदस्त बरकत है। एक बंदा 10 पे गालिब है, मगर शर्त यह है कि वो अल्लाह के लिए लड़ने वाला हो, इखलास के साथ लड़ रहा हो, जज्बे के साथ लड़ रहा हो। और ये जो दिल में हमारा जो जज्बा है ना, ये दिल का जज्बा, ये हर उठने वाला जज्बा अल्लाह के ऊपर बड़ा वाज़े है। हमारे हर हर लफ्ज को अल्लाह जानते हैं, हमारे हर हर दिल के जज्बे को अल्लाह जानते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ वाकयात हदीस की कुतुब में भी और तफासीर में बुजुर्गों ने बयान किए। उसमें से एक बड़ा मशहूर वाकया है कि एक बादशाह ने मस्जिद बनाई और मस्जिद बड़ी आलीशान बनाई थी, और उसके बाहर कतबे पे अपना नाम लिख दिया ताकि लोगों को पता चल जाए कि जी मस्जिद मैंने बनाई है, लोग मेरी नेकी की कायल हो जाएं। और ख्वाब में बादशाह जो है उसने जब सोया तो मस्जिद देखी, और पूरे मस्जिद में घूम के जब वो आखिर में दरवाजे के पास बना हुआ कतबा जब उसने देखा तो उसमें बादशाह का नाम नहीं था, किसी औरत का नाम था। तो बादशाह जब उठा तो थोड़ा सा परेशान हुआ कि जी कतबे पे तो मेरा नाम मैंने लिखने के लिए कहा था। तो बादशाह ने कहा वैसे ही ख्वाब है, रहने दो उसको, क्या ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। तो बादशाह ने इसकी फिक्र नहीं की, बादशाह को यकीन था कि मेरा ही नाम लिखा हुआ होगा। दूसरे दिन सोया तो ख्वाब में फिर यही ख्वाब देखा कि बादशाह इसी तरह मस्जिद में घूम रहा है, और जैसे ही आखिर में कतबे पे आया तो उसी औरत का नाम लिखा हुआ था। अब तो नाम भी याद हो गया। अब बादशाह थोड़ा परेशान हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है और किसी और का लिख दिया है, और मेरे हुक्म की हुक्म उदूली हुई है, तो अपने दरबार से किसी को भेजा के जाके कतबे पे देख के आओ, नाम मेरा लिखा है किसी और का। अब वो बंदा गया और जाकर मस्जिद में देख के आया और वापस आके उसने बताया कि बादशाह सलामत आप ही का नाम लिखा हुआ है। अब बादशाह नेक था, नेक इस लिहाज से था कि मस्जिद तो बनाई थी उसने, माहौल भी हर तरफ नेक था, नेकी को समझता भी था, मगर अब परेशानी का शिकार था कि ये ख्वाब 2 रातों से क्यों आ रहा है मुझे। रात सोया तो फिर यही ख्वाब वापस आया, बादशाह इसी तरह मस्जिद में घूम रहा है, और आखिर में इसी तरह दरवाजे पे आया, कतबे को देखा तो उसी औरत का नाम फिर से लिखा हुआ है। अब बादशाह उठा और उठ के उसने अपने साथियों से कहा तैयारी करो, हम मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। सफर करके मस्जिद पे पहुंचे और वहां पे अपने जो मुलाजिमीन थे या बादशाह के दरबार के जो लोग थे और मकामी लोग थे, उनसे कहा कि जी इस नाम की कोई औरत है जो यहां इस इलाके में है, अगर है तो मुझे बताया जाए। पूरा दिन ढूंढते रहे और उन्होंने कहा कि जी हाँ एक औरत है, बूढ़ी है, अकेली है, ना उसका शौहर है ना बेटा है, गरीब है, घर में भी नहीं रहती है, झोपड़ी कुटिया में रहती है। बादशाह ने कहा अच्छा, बादशाह ने कहा ठीक है, बस उससे मैंने मुलाकात करनी है। उन्होंने कहा जी उसको ले आते हैं आपके पास। बादशाह ने कहा नहीं, मैं उसके पास जाऊंगा। बादशाह सलामत चढ़ के उस चल के उस औरत की कुटिया में, बुढ़िया की कुटिया में पहुंचे और उससे जाके कहा कि जी हमने ये मस्जिद बनाई थी, इतनी बड़ी मस्जिद, आपने भी कुछ हिस्सा इसमें डाला है मस्जिद में? तो बुढ़िया थोड़ी मुस्कुरा पड़ी कि बादशाह सलामत, एक तो आप मेरे घर में आए, मैं तो इसी पे हैरान हूं कि गरीब बुढ़िया के घर पे कभी बादशाह कैसे आ सकता है, और दूसरा आप जो कह रहे हैं इतनी शाहाना मस्जिद जो है, मेरे पास तो खाने पीने को कुछ नहीं होता। मैं इस मस्जिद में कैसे कोई हिस्सा डाल सकती हूं? तो बादशाह सलामत मेरा कोई हिस्सा इस मस्जिद में नहीं है। अब बादशाह के जहन में तो यही घूम रहा था कि 3 रातों से इसी का नाम कत्बे पे लिखा हुआ है। बादशाह ने फिर कहा, कह नहीं बादशाह सलामत, मेरे पास कुछ नहीं है इस मस्जिद में, पास तो कभी कभी खाने को भी नहीं होता। तो बादशाह ने अपना ये ख्वाब सुनाया कि अम्मा असल बात ये है कि ख्वाब में बार बार कत्बे पे तेरा नाम लिखा हुआ देख रहा हूं, इसका मतलब है तूने इस मस्जिद में कोई चीज तो डाली है। उस वक्त उस बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए कि बादशाह सलामत, बहुत शौक होता था कि अल्लाह का घर बन रहा है, उसमें मेरा भी कोई हिस्सा डल जाए, मगर इतनी गरीब थी कि मैं क्या हिस्सा डालती। हाँ, इस बात इस मस्जिद के जो कुछ सामान यहां से गुजरता, ईंटें गुजरती, मट्टी गुजरती, यहां से जिन गधों पे ये मट्टी और ये ईंटें गुजरती, उन गधों को कभी कभी पानी पिला देती थी। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह दिल की नीयतों को जानते हैं। अल्लाह अकबर। चोरियां आंखों की और सीनों के राज, चोरियां आंखों की और सीनों के राज, जानता है सबको तू ए बेनियाज। सीनों के राज अल्लाह ही जानते हैं। जब दिल में नीयत सच्ची होती है, अल्लाह ताला फिर बरकत दे देते हैं। उस बूढ़ी औरत की नीयत सच्ची थी, उसके दिल में शौक था कि अल्लाह का घर बन रहा है, काश मैं भी कुछ इस घर में अपना हिस्सा डालती। अल्लाह ने उसके गधों को पानी पिलाने को ही कबूल कर लिया। तो इखलास, सच्चे दिल से अल्लाह के लिए नेक अमल करना, ये बरकत का बाइस बन जाता है। और जब इखलास नहीं होता तो बड़े बड़े अमल की कोई वैल्यू अल्लाह के यहाँ नहीं है। हदीस पाक में आता है, जिसने इबादत की दिखलावे के लिए, यानी अल्लाह के लिए नहीं की बस दिखाने के लिए लोगों को की, जिसने इबादत की दिखलावे के लिए उसने शिर्क किया, अल्लाह अकबर, यानी आम गुनाह नहीं किया, उसने अपने आप को अपने ईमान को जो है वो कटहरे में डाल दिया। मुखलिस बंदे की 3 निशानियां हैं, और मुखलिस बंदे की सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे मशहूर निशानी ये है कि वो नेक अमल करेगा तो नेक अमल को हमेशा छुपाएगा। ये जो शौक हमारा होता है ना कि हमारे नेक आमाल दूसरों को पता चले, जहां भी बैठेंगे अपने नेक आमाल के तस्करे कर लेंगे, और बहाने बहाने से नेक आमाल जो है वो दूसरों पर जाहिर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह, जिसके नेक अमल से अल्लाह खुश होते हैं ना, वो छुप के भी करता है, 7 कमरों के अंदर बैठ के भी करेगा ना, अल्लाह उसकी नेकी को लोगों पर जाहिर कर देते हैं। और जो बंदा अपने नेक अमाल को जाहिर करने की कोशिश करता है, उसके अमल को अल्लाह कबूल नहीं करते। तो मुखलिस बंदे की पहली निशानी ये कि वो अपने नेक आमाल को छुपाने की कोशिश करेगा। अगर साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु को बड़ी जबरदस्त कामयाबी मिली, सिपे सालार यही थे, तो मुसलमानों के हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर के खलीफ हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर खिलाफत था, और हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह अन्हु की सिपे सालारी में दस्ता गया जंग के लिए और जबरदस्त कामयाबी हुई, बहुत सारा माल गनीमत आया। तो एक आदमी आया जिसने अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा डाला हुआ था, और उसके हाथ में कोई ऐसी चीज थी, वो भी कपड़े में थी। उसने आके हजरत साद बिन अबी वकास को वो कपड़े में लिपटी हुई चीज दी कि जी ये भी मेरे हाथ आया, इसको भी माल गनीमत में शामिल कर ले, और अपना चेहरा दिखाए बगैर, अपना नाम बताए बगैर वापस चले गया। हजरत ने जब वो कपड़ा खोला तो अंदर से काफिरों के बादशाह का ताज निकला, उसमें इतना सोना और इतने हीरे लगे हुए थे कि वो अल्लाह, वो इतनी महंगी तरीन चीज थी कि हजरत साद बिन अबी वकास ने सोचा कि जी अगर ये बेच देता और इसमें से खाता तो इसकी 7 नस्लें खाती रहती, और सात नस्लों को कोई काम करने की जरूरत ना पड़ती। इतना इस ये महंगा तरीन ये बादशाह का ताज है, और इस शख्स ने आके मेरे हवाले कर दिया, और इसने अपना नाम भी नहीं बताया, चेहरा भी नहीं दिखाया, इतना बड़ा इसने अमल किया। तो हजरत ने उसको आवाज लगाई कि भाई मेरी बात तो सुनो, ए नौजवान, अपना नाम तो बता दे जो तू काफिरों के बादशाह का इतना बड़ा ताज मुझे दे गया। तो वो नौजवान आगे से कहता है कि मेरा अल्लाह मेरा नाम जानता है जिसके लिए मैंने ये ताज आपके हवाले किया। अल्लाह, तो मुखलिस बंदे की निशानी, वो अपने नेक आमाल को छुपाएगा। मुखलिस बंदे की दूसरी निशानी यह है कि वो दूसरों के नेक आमाल को रद्द नहीं करेगा। कई मरतबा हम चाहते हैं कि लोग हमें नेक समझें, और दूसरा कोई और नेकी कर भी रहा है तो हम उसकी नेकी के पीछे बदनीयती जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि जी फलां शख्स तो नमाज पढ़ रहा था बस इसलिए कि वो चाहता है कि वो मशहूर हो जाए, फलां शख्स ने ये जो दीन की राह में खर्च किया वो शोहरत के लिए कर रहा है। हम दूसरों के बारे में ये रखते हैं राय। तो मुखलिस बंदा जो है वो दूसरों के नेक आमाल को रद्द नहीं करेगा। कई मर्तबा नेक लोग जो होते हैं वो भी आपस में एक ही जैसा काम कर रहे होते हैं मगर दूसरे को अपने से बेहतर समझ रहे होते हैं, उसकी इंटेंशन और उसकी नीयत को ज्यादा बेहतर समझ रहे, और ये मुखलिस बंदे की बड़ी निशानी है। कयामे पाकिस्तान से पहले दो बड़े अकाबरीन, एक हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह जिनका तस्करा हमारी इस तफसीर में खूब होता है, और दूसरे हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। ये दोनों बुजुर्ग एक ही मदरसे के पढ़े हुए, एक ही सिलसिला से ताल्लुक रखने वाले, पूरे हिंदुस्तान में दोनों को बहुत पसंद किया जाता था, दोनों के बहुत सारे शागिर्द और बहुत सारे मुरीद। कयाम पाकिस्तान पे राय में इख्तलाफ हो गया। हजरत अकदस्तान की रहमतुल्लाह अलैह की राय थी कि जी मुसलमानों को अलग कौम बनानी चाहिए, अलग मुल्क बनाना चाहिए, पाकिस्तान के वो हामी थे। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह वो इस बात के हामी थे कि मुसलमान जो हैं जैसे अंग्रेजों के आने से पहले हुकूमत कर रहे थे पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत वही करें, और सारे मुसलमान जो हैं वो कोई अलग से और मुल्क ना बनाए। तो ये दो नजरिए थे और ये दोनों बड़े हजरात में इख्तलाफ हो गया, और शदीद तरीन इख्तलाफ हुआ वह था। सोचिए जब ये तहरीक पाकिस्तान अपने उरूज पे होगी तो इस दूसरे नजरिए के रखने वाले को कैसे देखा जा रहा होगा। इस दौरान एक शख्स जो है वो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, इख्तलाफ भी था मगर उसने देखा वो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास आया, और हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह से होते हुए आया। हजरत की खानकाह पे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पे सख्ती से सख्ती बहुत थी, डिसिप्लिन बहुत था, की पाबंदी बहुत थी। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पे भी तरबियत तो थी मगर जरा माहौल नरम था। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह पे सोने का वक्त मुतय्यन, जागने का वक्त मुतय्यन, जिक्र का वक्त मुतय्यन, खाने का वक्त मुतय्यन, हजरत के बाज़ नसीहत का वक्त, और सबको इस वक्त की पाबंदी करनी लाजमी थी, कोई टाइम ऑफ नहीं है। हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह में बड़ा रिलैक्स माहौल था, जो हजरत के बयान में बैठना चाहे बैठे, जिसने नहीं बैठना नहीं बैठे, जिसने ज्यादा आराम करना है ज्यादा आराम करे, जिसने थोड़ा आराम करना है थोड़ा आराम करे, अगर रात को देर भी हो जाए सोते सोते आपस में बातचीत हो रही है तो कोई मसला नहीं है, तो नरमी थी। तो एक साहब इस इख्तलाफ के जमाने में हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए, उन्होंने कहा हजरत उनकी भी खानकाह से होके आ रहा हूं, यहां भी आया हूं आपके पास, आप जिस तरह से काम कर रहे हैं बड़ा अच्छा है, इससे लोग जुड़ते हैं, नरमी का माहौल है। तो इख्तलाफ सियासी भी चल रहा था, अब आने वाले ने आके तारीफ भी कर दी कि जी आपकी खानकाह पे माहौल अच्छा है, लोग ज्यादा आसानी से आते हैं, खुशी खुशी आपके पास आते हैं, वहां तो सख्ती का माहौल है। मगर इस इख्तलाफ के बावजूद, इस दूसरे की तारीफ करने के बावजूद, हजरत ने उससे कहा कि भाई ये जो इलाज करने वाले डॉक्टर होते हैं ना, वो दो किस्म के होते हैं। एक बड़ा डॉक्टर होता है, वो सर्जन होता है, बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज करता है और बड़ी बड़ी बीमारियों को काट कर फेंक के निकाल देता है। एक वो होता है जिसको बात ज्यादा आता नहीं है, कहने को डॉक्टर होता है, बस वो दवाइयां देता है, मरहम रखता है। उन्होंने कहा जी हजरत थानवी जो है वो उस सर्जन की तरह बड़े डॉक्टर हैं जो सही इलाज करते हैं, और हमारी मिसाल तो ये छोटे डॉक्टरों वाली है, इनको बस थोड़ी सी दवाइयां आती हैं और मरहम रखना आता है। तो इस इख्तलाफ के बावजूद भी उनके कामों को, उनके अच्छे कामों को रद्द नहीं किया। ये मुखलिस बंदे की निशानी होती है कि वो दूसरों के नेक आमाल को रद्द नहीं करता। तो मुखलिस बंदे की तीन बड़ी निशानी, और पहली निशानी ये कि मुखलिस बंदा जो है वो अपने अमल को छुपाएगा, और दूसरी निशानी होती है कि मुखलिस बंदा दूसरे के नेक अमल को रद्द नहीं करेगा, और तीसरी निशानी ये कि मुखलिस बंदा अगर इसलाह की बात किसी छोटे से भी मिल जाए तो उस इसलाह की बात को लेने में आर महसूस नहीं करेगा। जैसे कोई इसलाह की बात हमें कोई अपने से छोटी उम्र का करे तो हम कहें कि तुझे क्या पता, मुझे बहुत पता है, मुझे ना, मेरी मुझे ना बता। बस हम कहते हैं कि कोई बहुत बड़ी कोई शख्सियत हो ना, वो हमें नसीहत के, तो उसकी बात तो हम सुनेंगे, बाकी सारे जो है ना उनसे तो ज्यादा मैं बेहतर हूं। मगर मुखलिस बंदा जो है वो ये सोच रहा होता है कि बस इस्लाह की बात मिल जाए, कोई मेरी गलती है तो वो सही हो जाए, ताकि अल्लाह के यहाँ मैं बेहतर हो जाऊं, पहले से साफ हो जाऊं। तो मुखलिस बंदा छोटों से भी इस्लाह ले लेगा, बड़ों से भी इस्लाह ले लेगा। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्होंने ये मारिफुल कुरान लिखी जिसको हम सब पढ़ रहे हैं, हजरत फरमाते हैं, और हजरत थे अपने जमाने में मुफ्ती आजम पाकिस्तान, पूरे मुल्क के अंदर उलमा का ये मुत्तफिका फैसला था कि इनसे बड़ा आलिम कोई नहीं, और बड़े अल्लाह वाले भी थे, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा खुलफा में से थे। वो फरमाते हैं कि जब कभी कहीं रास्ते से जा रहा होता और किसी मस्जिद में से किसी वाज और नसीहत करने वाले आलिम की आवाज आ जाती तो खड़ा रह जाता कि शायद कोई ऐसी बात वो कर दे कि जिससे मेरी इसलाह हो जाए, कि मेरी गलती मेरे दिल में आ जाए। अल्लाह, तो मुखलिस बंदे की तो ये निशानी है कि इस्लाह जो भी करे, सही बात जो भी बताए, उसको लेने में कोई हर्ज नहीं महसूस करे। तो कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया कि अगर तुम मोमिन हो, एक हो तो 10 पे गालिब आ जाओगे, 100 हो तो 1000 पे गालिब आ जाओगे, मगर शर्त ये है कि खालिस अल्लाह के लिए लड़ना है, ईमान के साथ सच्चाई के साथ लड़ना है। तो जब इंसान मुखलिस होता है तो बरकतें आती हैं, और मुखलिस बंदे की ये निशानी आपके सामने पेश की गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी इखलास नसीब फरमाए। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यहाँ की आज की क्लास मुकम्मल होती है, आज तर्जमा कर देता है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी, ए नबी, हर्र दिल मोमिनीन अल अल-क़िताल, शौक दिलाए मुसलमानों को लड़ाई का। इय्यकुम मिनकुम अश्शुरून अस्साबिरून, अगर तुम में से साबित कदम 10 हैं, यगलिबू मिअतैन, नहीं साबित कदम 20 हैं, यगलिबू मिअतैन, तो वो 200 के ऊपर गालिब होंगे। वही यकुम मिनकुम मिअतुन, और अगर तुम में 100 हैं, यगलिबू अल्फम मिन अल्लज़ीन कफरू, तो वो 1000 पर गालिब हो जाएंगे काफिरों पर। بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ, क्योंकि ये जो कौम है काफिरों की, ये नहीं समझ रखती है। तो यहाँ आके आज की क्लास मुकम्मल होती है। तालिबात थोड़ी देर के लिए मुराकबा कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को झुका लें, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह की याद में डूब जाए। थोड़ी देर के लिए अपने दिलों में अल्लाह को याद कर लें, आंखों को बंद कर लें, सर को हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका हो कर जी, मरे तो उसका हो कर मर, हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, तेरे कदम हो उसकी राह, तेरे कदम हो उसकी राह, तेरा दिल हो उसका घर, हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर, जिए तो उसका होकर जी, मरे तो उसका होकर मर, हर दम अल्लाह अल्लाह कर, नूर से अपना सीना भर। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दुआ कर लीजिए। सुभान रब्बिल आलिल वहाब, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिअ व अमलन मुतकब्बला व लिसानन ज़ाकिर व क़ल्बन ख़ाशिअ ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.